एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं, वो सवाल जो शायद हम सब कभी ना कभी सोचते हैं, मैं असल में हूं कौन।
नमस्ते। हाँ बिल्कुल, और इस खोज में, इस पहेली को सुलझाने में आज हम मदद लेंगे मनोवैज्ञानिक मीतू बिष्ट की किताब व्हाई वी आर हु वी आर, मतलब हम जो हैं वो क्यों हैं।
हाँ, अब ये साफ कर दें कि किताब असल में तो काल्पनिक है, पर इसका जो पूरा विश्लेषण है वो मीतू बिष्ट के काम और उनकी जो गहरी समझ है ना मानव मन की, उस पर आधारित है।
और ये सवाल तो आज के वक्त में मुझे लगता है और भी जरूरी हो गया है। हम सब कहीं ना कहीं अपनी जड़ों, अपनी परंपराओं और आज की जो ये तेज रफ्तार जिंदगी है,
बिल्कुल,
उसके बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश में लगे हैं। तो ऐसे में खुद को समझना कि भाई हम बने कैसे, क्यों सोचते हैं ऐसा जैसा सोचते हैं, ये तो बहुत मायने रखता है।
सही बात है, और ये किताब इसी समझ को बनाने में मदद करती है। इसका जो मूल आइडिया है वो ये कि हमारी पहचान ना कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि बस एक बार बन गई तो बन गई। नहीं, ये तो एक लगातार चलने वाली, बदलने वाली चीज है, एक प्रक्रिया है।
अच्छा।
हाँ, इसमें हमारी प्रकृति, मतलब जो गुण हमें जन्म से मिले हैं, फिर हमारी परवरिश यानी हमारा माहौल, परिवार, कल्चर, और हाँ, हमारे अपने फैसले भी, इन सब का ना एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा जाल बुना होता है।
सही, एक मिलाजुला असर कह सकते हैं।
हाँ बिल्कुल। तो चलिए आज इसी दिलचस्प बुनावट को थोड़ा और खोल कर देखते हैं ना।
हाँ जरूर, लेकिन इस सफर पर आगे बढ़ने से पहले ये जरूरी है कि हम अपनी गाइड यानी इस किताब की जो लेखिका है मीतू बिष्ट, उनके बारे में थोड़ा जान लें।
हाँ जरूरी है।
वो एक काफी जानी मानी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और रिसर्चर है, और उनकी खासियत है इंसानी मन को समझना, खासतौर पर जो आज का भारत है।
हाँ,
उसके माहौल में पहचान कैसे बनती है, सेल्फ एस्टीम, रिश्ते, इन सब पहेलियों को सुलझाने में वो माहिर हैं।
हाँ, और जो बात मुझे उनकी सबसे खास लगती है वो ये कि वो सिर्फ किताबी बातों या थियोरी तक ही सीमित नहीं है।
बिल्कुल,
उनके पास सालों का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, मतलब उन्होंने हजारों लोगों के साथ काम किया है, उनकी जिंदगियों को, उनकी जो उलझने होती हैं, उन्हें बहुत करीब से देखा है, समझा है, और ये तजुर्बा ना उनकी बातों में एक सच्चाई और एक हमदर्दी लाता है।
सही बात है।
उनकी एक पिछली किताब थी द सबड्यूड सेल्फ, वो भी काफी चर्चा में रही थी। उसमें उन्होंने भारतीय महिलाओं के जो दबे हुए असली स्वरूप है उस पर बात की थी।
हाँ, मैंने भी सुना है उसके बारे में।
और देखिए, मीतू बिष्ट सिर्फ साइकोलॉजी तक ही नहीं रुकती, वो न्यूरोसाइंस, मतलब हमारा दिमाग कैसे काम करता है,
हाँ,
और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी यानी कि संस्कृति हम पर कैसे असर डालती है, इन सबको मिलाकर एक पूरी तस्वीर देखती है।
हाँ, एक होलिस्टिक अप्रोच कह सकती हूँ मैं।
बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि वो पश्चिम और पूरब, साइंस और फिलोसफी, सबको साथ लेकर चलती हैं, और यही चीज उन्हें इस विषय पर एक बहुत ही यूनिक पकड़ देती है। वो सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हो रहा है, बल्कि ये भी समझाती हैं कि क्यों और कैसे हो रहा है, ये बड़ी बात है।
सही, तो फिर ये किताब व्हाई वी आर हु वी आर आखिर है क्या चीज, इसे कैसे समझें?
देखिए, इसे आप ना अपनी पहचान की जो गुत्थी है उसे सुलझाने वाली एक गाइडबुक की तरह समझ सकते हैं।
अच्छा।
इसका मकसद है उन सभी ताकतों को समझना, उन सभी असर को समझना जिन्होंने हमें आज वो बनाया है जो हम हैं, चाहे वो ताकतें हमें दिखती हों या ना दिखती हों।
और ये किताब किसके लिए है, मतलब कौन पढ़े इसे?
मेरे ख्याल से तो ये उन सभी के लिए है जिन्होंने कभी भी ऐसा महसूस किया हो कि वो किसी अनजाने से पैटर्न में फंसे हुए हैं।
हाँ, होता है ऐसा।
या कभी अपनी ही सोच, अपने ही रिएक्शन पर हैरानी हुई हो, कह रहे मैंने ऐसा क्यों कर दिया, या फिर जो लोग अपने असली स्व से, अपने अंदर की आवाज से ज्यादा गहराई से जुड़ना चाहते हैं।
हाँ, और शायद ये उन लोगों से खास तौर पे बात करती है जो अक्सर परिवार की उम्मीदों,
बिल्कुल,
समाज के नियमों या अपने अंदर ही जो एक नुक्ताचीनी करने वाली आवाज होती है ना, जिसे इनर क्रिटिक कहते हैं,
हाँ हाँ, वो आवाज,
उसके बोझ तले दबा हुआ महसूस करते हैं।
एकदम सही कहा।
तो ये किताब हमें ना एक तरह की यात्रा पर ले जाती है। ये शुरू होती है हमारी बिल्कुल जड़ों से, हमारे जीन्स, हमारा दिमाग कैसे डेवलप हुआ बचपन में।
अच्छा।
फिर ये दिखाती है कि कैसे हमारे शुरुआती रिश्ते, खासकर जो हमारे पहले देखभाल करने वाले होते हैं, माँ बाप, उनके साथ हमारा जुड़ाव, जिसे अटैचमेंट कहते हैं,
हाँ, अटैचमेंट थियरी,
हाँ, वो कैसे हमारी नींव डालते हैं। उसके बाद ये परिवार और संस्कृति के असर को परत दर परत खोलती है।
कि कैसे समाज हमें एक खास तरह के सांचे में ढालने की कोशिश करता है और आखिर में ये हमें हमारे अंदर की दुनिया, हमारे जो विचार हैं, हमारे भावनाएं हैं, उनको समझने में मदद करती है।
और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो ये कि ये सिर्फ प्रॉब्लम बताकर छोड़ नहीं देती है ना।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये हमें ताकत देने का, बदलाव लाने का रास्ता भी दिखाती है। ये बताती है कि कैसे हम अपनी सोच और भावनाओं के बारे में ज्यादा जागरूक हो सकते हैं, कैसे उन पुरानी धारणाओं को चुनौती दे सकते हैं जो हमें रोकती हैं।
सही।
और कैसे अतीत के जो असर हैं उनसे निकलकर सिर्फ रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर अपनी जिंदगी की राह चुन सकते हैं।
मतलब ये सिर्फ ये जानने का सफर नहीं है कि हम कौन हैं, बल्कि ये चुनने का भी कि हम कौन बनना चाहते हैं।
एग्जैक्टली। बहुत खूबसूरती से कहा आपने। तो चलिए अब इस पहचान की कहानी के जो अलग अलग अध्याय हैं उनमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं।
हाँ, चलते हैं। किताब की शुरुआत होती है हमारी बिल्कुल बुनियादी नींव से। पहला सवाल, हम इस दुनिया में लेकर क्या आते हैं? क्या हम एकदम कोरी स्लेट होते हैं?
नहीं, किताब यही कहती है कि हम कोरी स्लेट नहीं होते। हमारे डीएनए में ना कुछ झुकाव होते हैं। जैसे कोई पैदाइशी तौर पर ज्यादा शर्मीला इंट्रोवर्ट हो सकता है।
हाँ।
कोई ज्यादा मिलनसार एक्सट्रोवर्ट, कोई ज्यादा भावुक हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआती ब्लूप्रिंट जैसा है, कोई पक्की लिखावट नहीं है कि बस यही होगा।
अच्छा, मतलब ये बदला जा सकता है।
हाँ, यहीं पर एपिजेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट आता है। ये बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है कि हमारे जो अनुभव होते हैं, हमारा माहौल, वो असल में हमारे जीन्स को चालू या बंद कर सकते हैं।
अरे वाह, ये तो कमाल की बात है।
है ना, मतलब प्रकृति और परवरिश, नेचर और नर्चर, ये जन्म से ही हाथ में हाथ डालकर चलते हैं, एक दूसरे पर असर डालते हैं।
और इसी से जुड़ा हुआ है हमारे दिमाग का विकास, है ना, खासकर बचपन के शुरुआती सालों में।
हाँ बिल्कुल, वो साल बहुत अहम होते हैं। उस दौरान हमें कितनी सुरक्षा मिली या इसके उलट कितना तनाव झेलना पड़ा, ये सब हमारे दिमाग में ना रास्ते बनाते हैं, जिन्हें न्यूरल पाथवेज कहते हैं।
अच्छा।
लेकिन अच्छी खबर यह है, जैसा आपने कहा, कि हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो सख्त नहीं है।
हाँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी।
एग्जैक्टली, न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग जिंदगी भर बदल सकता है, नए रास्ते बना सकता है, पुरानी आदतें बदल सकता है। ये जानना हमें बहुत उम्मीद देता है।
बिल्कुल।
कि अगर बचपन मुश्किल भी रहा हो तब भी बदलाव मुमकिन है।
सही।
दिमाग के बाद किताब बात करती है दिल के मामले की, मतलब हमारे शुरुआती रिश्ते।
हाँ, अटैचमेंट थ्योरी, जॉन बोलबी जी।
हाँ वही अटैचमेंट थ्योरी। इसका जो सार है वो ये है कि हमारा अपने पहले देखभाल करने वाले के साथ जो रिश्ता बनता है, अक्सर माँ होती हैं पर कोई भी हो सकता है, वो रिश्ता जिंदगी भर के लिए एक तरह का मानसिक खाका बना देता है। इसे इंटरनल वर्किंग मॉडल कहते हैं।
अच्छा, मानसिक खाका, ये क्या होता है?
ये एक तरह से हमारे मन में बनी एक धारणा होती है कि रिश्ते कैसे होते हैं, क्या हम दूसरों पर भरोसा कर सकते हैं, हम खुद कितने प्यार के काबिल हैं। इसे आप एक तरह का रिश्तों का चश्मा समझ सकते हैं, जिससे हम अनजाने में ही दुनिया को और अपने रिश्तों को देखते हैं।
ये तो काफी गहरा असर डालता होगा फिर।
बहुत ज्यादा। और मोटे तौर पर किताब चार तरह के स्टाइल बताती है। एक होता है सुरक्षित, सिक्योर।
हाँ।
इसमें बच्चा अपने देखभाल करने वाले पर भरोसा करता है, जरूरत पड़ने पर उनके पास जाता है और फिर दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए आजाद महसूस करता है। ये सबसे हेल्दी स्टाइल है।
अच्छा, और बाकी तीन?
वो असुरक्षित होते हैं।
हाँ।
बाकी तीन असुरक्षित माने जाते हैं। एक है चिंतित, एंग्शियस। इसमें बच्चा बहुत चिपका रहता है, उसे डर लगता है कि कहीं उसे छोड़ ना दिया जाए। दूसरा है उदासीन या बचावी, अवॉइडेंट। इसमें बच्चा अपनी जरूरतें दबा लेता है, ज्यादा दिखाता नहीं और दूरी बनाए लगता है, जैसे कि उसे किसी की जरूरत ही नहीं। और तीसरा है भयभीत या अव्यवस्थित, फियरफुल, डिसऑर्गेनाइज्ड। ये सबसे मुश्किल होता है। इसमें बच्चा देखभाल करने वाले से जरूरत भी महसूस करता है और डरता भी है, कंफ्यूज रहता है।
बाप रे। और ये पैटर्न ये बड़े होने पर भी चलते रहते हैं?
हाँ, अक्सर। ये हमारे रोमांटिक रिश्तों में, हमारी दोस्ती में, यहाँ तक कि हमारे काम की जगह पर भी हमारे व्यवहार को प्रभावित करते रहते हैं। इन्हें समझना हमें अपने रिश्तों के पैटर्न को पहचानने में मदद कर सकता है।
ये तो बहुत जरूरी है समझना। अच्छा, तो रिश्तों के बाद किताब शायद परिवार और समाज की बात करती होगी।
बिल्कुल। रिश्तों के बाद नंबर आता है बड़े दायरे का, हमारा परिवार और हमारी संस्कृति। किताब परिवार को एक फैक्ट्री की तरह देखती है।
फैक्ट्री?
हाँ, जहाँ हमारे विश्वास, हमारी आदतें, हमारे नियम कायदे बनते हैं, है ना। परिवार में अक्सर अनकहे नियम होते हैं।
हाँ, होते हैं।
और कभी कभी हमें अनजाने में ही कुछ भूमिकाएं मिल जाती हैं, जैसे कोई बच्चा हीरो बन जाता है जो हमेशा सब अच्छा करता है, कोई बलि का बकरा बन जाता है जिसपे सारी मुसीबतें डाली जाती है।
हाँ, हाँ। या कोई शांति दूत जो हमेशा लड़ाई सुलझाने की कोशिश करता है।
बिल्कुल, और ये भूमिकाएं ना हमारी पहचान का हिस्सा बन सकती हैं, हमें पता भी नहीं चलता।
और परिवार के साथ साथ संस्कृति का भी तो बहुत गहरा असर होता है, खासकर हमारे जैसे देश में।
हाँ, भारत के संदर्भ में तो ये बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक है। यहाँ सामूहिकता, कलेक्टिविज्म पे जोर ज्यादा है, मतलब परिवार और समाज की इज्जत, उनकी उम्मीदें बहुत मायने रखती है।
हाँ,
तो किताब बात करती है उन अलिखित स्क्रिप्ट की, कि भाई सफल होने का क्या मतलब है, एक अच्छा बेटा या अच्छी बेटी कैसा होता है, इज्जत कैसे कमाई जाती है,
और वो एक डर जो हमेशा रहता है, लोग क्या कहेंगे।
हाँ, ये तो जैसे नस नस में बसा है हमारे,
है ना। या फिर संस्कार के नाम पर अक्सर हम अपने असली स्व को, अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं, जिसे मीतू बिष्ट सबड्यूड सेल्फ यानी दबा हुआ स्व कहती है।
सही कहा, और इसी से जुड़ा हुआ है लिंग का मुद्दा, कैसे समाज लड़कों और लड़कियों को बचपन से ही अलग अलग भूमिकाओं में ढालता है।
हाँ, लड़कों से उम्मीद की जाती है कि वो मजबूत बने, रोए नहीं, अपनी भावनाएं छुपाएं,
और लड़कियों से
कि वो देखभाल करें, नर्म रहें, त्याग करें, अपनी जरूरतें बाद में रखें।
और इन सीमित दायरों की एक मनोवैज्ञानिक कीमत होती है ना।
बिल्कुल, चिंता, तनाव, डिप्रेशन, अपनी ही भावनाओं से एक तरह का अलगाव, ये सब कहीं ना कहीं इन जेंडर रोल से जुड़ा हो सकता है।
अच्छा, तो ये तो हुई बाहरी दुनिया की बातें, परिवार, संस्कृति, जेंडर।
अब किताब शायद अंदर की दुनिया की तरफ ले जाती होगी, हमारे मन की दुनिया।
हाँ बिल्कुल, बाहर के असर के बाद किताब हमें हमारे अंदर की दुनिया में ले जाती है, हमारे मन और भावनाओं के परिदृश्य में। यहाँ बात होती है स्कीमाज की।
स्कीमा, ये क्या है?
स्कीमा यानी हमारे मन में बैठी वो गहरी बुनियादी मान्यताएं खुद के बारे में, जैसे मैं काफी अच्छी नहीं हूं, या मैं प्यार के लायक नहीं हूं, या दूसरों के बारे में, लोग भरोसे के लायक नहीं होते, या दुनिया के बारे में, दुनिया खतरनाक जगह है। ये स्कीमा अक्सर बचपन के अनुभवों से बनते हैं।
और ये हमारी आज की सोच पर असर डालते हैं?
हाँ, ये हमारे मानसिक फिल्टर की तरह काम करते हैं। हम दुनिया को, लोगों को, खुद को इन्हीं के जरिए देखते हैं। ये हमारी पूरी सोच को रंग देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता।
और इन्हीं मान्यताओं से शायद वो सोचने की गड़बड़ियां भी होती होंगी, जिनके बारे में साइकोलॉजिस्ट बात करते हैं।
हाँ, संज्ञानात्मक विकृतियां, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, जैसे हर चीज को सिर्फ काला या सफेद देखना, या एक छोटी सी गलती को बहुत बड़ी तबाही मान लेना।
हाँ हाँ, कैटास्ट्रोफाइजिंग।
बिल्कुल, या फिर जो अच्छी चीजें हैं उन्हें नजरअंदाज कर देना और सिर्फ बुरी चीजों पर ध्यान देना, ये सब सोचने के गलत पैटर्न हैं जो अक्सर इन गहरे स्कीमा से जुड़े होते हैं।
और फिर वो हमारा जाना पहचाना साथी, अंदर का आलोचक,
इनर क्रिटिक,
वो आवाज जो हमेशा नुक्स निकालती रहती है।
हाँ, वो आवाज, तुमसे नहीं होगा, तुमने फिर गड़बड़ कर दी, तुम मोटे हो, तुम बेवकूफ हो, कुछ भी।
ये आवाज आती कहाँ से, ये इतनी ताकतवर क्यों होती है?
किताब एक बहुत अच्छी बात कहती है, वो कहती है कि आपका आंतरिक आलोचक आपका विवेक नहीं, आपका डर है। ये आपके अतीत का भूत है जो शायद आपके माता पिता, शिक्षकों या समाज का मुखौटा पहने हुए है, और आपको उस खतरे से बचाने की कोशिश कर रहा है जो शायद बहुत पहले बीत चुका है।
वाह, ये तो सोचने वाली बात है, मतलब ये हमारी मदद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गलत तरीके से।
हाँ, एक तरह से वो हमें निराशा या रिजेक्शन से बचाने की कोशिश कर रहा है, हमें परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि हमें चोट ना पहुंचे, लेकिन उसका तरीका बहुत नुकसानदेह है। किताब कहती है, असली ज्ञान भूत की बात मानने में नहीं, बल्कि बत्ती जलाकर ये देखने में है कि ये सिर्फ एक परछाई है।
इस आवाज को पहचानना ही शायद पहला कदम है।
बिल्कुल, और ये अंदरूनी आलोचक अक्सर हमारी भावनाओं को भी दबाने की कोशिश करता है।
हाँ,
है ना, हमें बताता है कि गुस्सा करना बुरा है या रोना कमजोरी है।
हाँ बिल्कुल, लेकिन किताब का नजरिया अलग है, वो कहती है कि भावनाओं को अच्छा या बुरा मत मानो।
सही,
उन्हें जानकारी का स्रोत समझो।
वो हमें कुछ बता रही हैं।
जैसे?
जैसे गुस्सा शायद ये बता रहा है कि आपकी कोई सीमा लांघी गई है, आपके साथ कुछ गलत हुआ है। उदासी बता रही है कि आपने कुछ खोया है या कुछ ऐसा है जो आपको चाहिए था और नहीं मिला।
और चिंता?
चिंता शायद किसी आने वाले खतरे का संकेत दे रही है या किसी अनिश्चितता का। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है इन संकेतों को समझना, अपनी भावनाओं को नाम देना सीखें, उनके पीछे छिपे मैसेज को समझें और फिर उन्हें सही तरीके से मैनेज करना सीखें, ना कि उन्हें अनदेखा करें या उन पर पूरी तरह बह जाएं।
ये तो बहुत जरूरी स्किल है। अच्छा, तो इतना सब समझने के बाद हमारे जीन्स, हमारा दिमाग, हमारे रिश्ते, परिवार, संस्कृति, हमारी सोच, भावनाएं। सवाल ये उठता है कि क्या हम बदल सकते हैं? क्या हम इन पैटर्न से बाहर निकल सकते हैं?
और किताब का जवाब है हाँ, बिल्कुल निकल सकते हैं। और इसका रास्ता जाता है प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी की ओर, मतलब ज्यादा असली बनने की ओर।
और इसका पहला कदम क्या है?
पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है ठहराव की शक्ति, पावर ऑफ द पॉज। ये माइंडफुलनेस यानी जागरूकता से आती है।
माइंडफुलनेस मतलब ध्यान लगाना।
ध्यान लगाना इसका एक हिस्सा हो सकता है, पर माइंडफुलनेस का मतलब है अपने वर्तमान क्षण के अनुभव के प्रति जागरूक होना बिना किसी जजमेंट के। अपनी सांसों पर ध्यान देना, अपने शरीर की संवेदनाओं पर, अपने विचारों और भावनाओं पर जैसे वो आ रहे हैं और जा रहे हैं।
और इससे क्या होता है?
इससे वो होता है जो किताब कहती है, किसी घटना और आपकी प्रतिक्रिया के बीच एक पवित्र स्थान निहित है। हमारे अधिकांश जीवन के लिए वो स्थान एक सेकंड का अंश होता है जो अचेतन आदत से भरा होता है। आत्म जागरूकता का लक्ष्य उस स्थान को चौड़ा करना है। उस स्थान में आपकी ये चुनने की स्वतंत्रता निहित है कि आप कौन बनना चाहते हैं।
वाओ, मतलब जब कुछ होता है तो हम तुरंत रिएक्ट करने के बजाय रुकते हैं।
हाँ, एक पल के लिए रुकते हैं, देखते हैं कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, क्या विचार आ रहे हैं, क्या भावनाएं उठ रही हैं, और फिर हम चुनते हैं कि हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, अपनी पुरानी आदत के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी समझ और अपने मूल्यों के हिसाब से।
ये तो आज़ादी है।
बिल्कुल, यही असली आज़ादी है। और दूसरा शक्तिशाली तरीका जो किताब बताती है वो है अपनी कहानी को फिर से लिखना, री राइटिंग योर स्टोरी।
अपनी कहानी मतलब?
देखिए, हम सब अपने जीवन के बारे में, खुद के बारे में एक कहानी सुनाते हैं, अपने मन में भी और दूसरों को भी, है ना?
हाँ बिल्कुल।
यह हमें कमजोर महसूस कराती है, जैसे मैं हमेशा फेल हो जाती हूँ या मुझे कभी प्यार नहीं मिलेगा। तो हम उस कहानी को बदल सकते हैं।
कैसे?
नैरेटिव साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि हम अपनी कहानी के सिर्फ किरदार नहीं हैं, हम उसके लेखक भी हैं। हम अपने अनुभवों को नया मतलब दे सकते हैं, अपनी ताकतों पर, अपनी सफलताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हम एक ऐसी कहानी लिख सकते हैं जो ज्यादा सच्ची हो, ज्यादा लचीली हो और ज्यादा उम्मीद भरी हो।
मतलब हम अपने अतीत को बदल नहीं सकते, पर हम उसे देखने का नजरिया बदल सकते हैं।
बिल्कुल, और यही बदलाव हमारी पहचान को बदलता है। जैसा कि किताब कहती है, पहचान वो नहीं है जो हमारे पास है, बल्कि वो है जो हम करते हैं। होने की एक निश्चित अवस्था के बजाय बनने की एक सतत प्रक्रिया।
ये बहुत पावरफुल विचार है।
हाँ, और आखिर में किताब बात करती है एकीकरण और समग्रता,
इंटीग्रेशन एंड होलनेस। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है अपने हर हिस्से को स्वीकार करना। हाँ। अपनी अच्छाइयों को भी, अपनी कमजोरियों को भी, अपनी रोशनी को भी, अपने अंधेरे को भी। हाँ। अपनी दबी हुई पहचान और अपनी असली पहचान के बीच जो लड़ाई चलती रहती है। हाँ। उससे आगे बढ़कर एक पूरा इंसान बनना, ये समझना कि हम सब में सब कुछ हैं। और ये सफर कभी खत्म नहीं होता, ये जिंदगी भर चलने वाली यात्रा है। मंजिल पर पहुंचना जरूरी नहीं, चलते रहना जरूरी है।
बिल्कुल।
लक्ष्य परफेक्ट बनना नहीं है बल्कि पूरा बनना है, होल बनना है।
तो इस सारी बातचीत को अगर समेटें तो कुछ खास बातें, कुछ मुख्य संदेश निकल कर आते हैं ना?
हाँ बिल्कुल। पहला और शायद सबसे बड़ा सबक तो यही है कि पहचान कोई ठहरी हुई चीज नहीं है, ये लगातार बदलती रहती है, विकसित होती रहती है। ये हमारी पैदाइश, हमारे अनुभव और हमारी कोशिशों का एक मिलाजुला डायनामिक नतीजा है।
हाँ, और दूसरी अहम बात जो मुझे लगी वो है उन अदृश्य स्क्रिप्ट्स का असर जो हमें परिवार और समाज से मिलती हैं, वो अलिखित नियम जैसे लोग क्या कहेंगे, परिवार की इज्जत।
हाँ हाँ,
सफलता का ये मतलब है, ये सब हमारी सोच, हमारे मूल्यों, हमारे व्यवहार पर कितना गहरा असर डालते हैं, खासकर हमारे भारतीय समाज में। और कई बार हम अपनी असली खुशी या अपनी असलियत इन्हीं स्क्रिप्ट्स के लिए कुर्बान कर देते हैं।
सही कहा। और तीसरा, वो जो अंदरूनी खींचतान चलती रहती है हमारे असली स्व और दिखावटी स्व के बीच।
हाँ,
है ना? वो इंसान जो हम दुनिया को दिखाने के लिए बनते हैं और वो इंसान जो हम अंदर से हैं या बनना चाहते हैं, इस फासले से ही काफी तनाव और बेचैनी पैदा होती है।
और चौथा, जो आपने अटैचमेंट की बात की थी, बचपन का वो जुड़ाव, वो अटैचमेंट स्टाइल जिंदगी भर के लिए एक खाका बन जाता है। वो हमारे बड़े होने पर रिश्तों को, भरोसा करने की हमारी क्षमता को, दुनिया में सुरक्षित महसूस करने के हमारे एहसास को अनजाने में ही प्रभावित करता रहता है।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और पांचवां, कि हमारे विचार हमेशा सच नहीं होते और हमारी भावनाएं हमारी दुश्मन में ही हमारी गाइड हैं। खासकर वो अंदर के आलोचक की आवाज, उसे सच मानने की जरूरत नहीं है। और अपनी भावनाओं को सुनना, उन्हें समझना हमें अपनी जरूरतों और सीमाओं को जानने में मदद करता है।
और आखिर में सबसे उम्मीद भरी बात, बदलाव मुमकिन है। सचेत प्रयास से, एजेंसी से हम बदल सकते हैं। ये जानना कि हमारा दिमाग बदल सकता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी, और हम अपनी कहानी बदल सकते हैं, नैरेटिव साइकोलॉजी, ये हमें बहुत ताकत देता है। हम सिर्फ अपने अतीत या हालातों के गुलाम नहीं हैं।
ये तो बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन अब बड़ा सवाल ये आता है कि इन सब विचारों को, इस समझ को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें, क्या करें?
हाँ, ये जरूरी सवाल है और किताब इसमें भी हमारी मदद करती है। सबसे पहली चीज तो है अपनी जागरूकता बढ़ाना, सेल्फ अवेयरनेस। थोड़ा रुक कर सोचना, ध्यान देना कि कौन सी पारिवारिक या सांस्कृतिक स्क्रिप्ट मुझ पे हावी हो रही है। क्या मैं कोई फैसला इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं सच में वो चाहती हूँ, या इसलिए कि सब यही करते हैं या परिवार यही चाहता है?
हाँ, ये सवाल पूछना जरूरी है।
बिल्कुल। और अपने रिश्तों में अपने अटैचमेंट पैटर्न को पहचानने की कोशिश करना। मैं बार बार एक ही तरह के पार्टनर क्यों चुनती हूँ, या मुझे भरोसा करने में इतनी मुश्किल क्यों होती है?
और इस जागरूकता से फिर रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, है ना?
या
जब हम समझते हैं कि सामने वाले का व्यवहार शायद उसकी अपनी पुरानी कंडीशनिंग या उसके अटैचमेंट स्टाइल से आ रहा है,
हाँ,
तो हम उसे कम पर्सनली लेते हैं, ज्यादा हमदर्दी दिखा पाते हैं और झगड़े कम होते हैं।
सही। और हम अपनी जरूरतें भी ज्यादा साफ तरीके से बताना सीख सकते हैं, बिना इल्जाम लगाए। जैसे ये कहने के बजाय कि तुम हमेशा काम करते रहते हो, ये कहना कि मुझे अकेलापन महसूस होता है और मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहती हूँ।
हाँ, ये ज्यादा सरदार होगा। और पेरेंटिंग में भी ये सोच बहुत काम आ सकती है।
कैसे?
अपने बच्चों के साथ एक सुरक्षित, सिक्योर अटैचमेंट बनाना, उन्हें महसूस कराना कि वो सेफ हैं, उनसे प्यार किया जाता है, ताकि वो भावनात्मक रूप से मजबूत बने।
हाँ, और शायद ये भी कोशिश करना कि हम अपने परिवार से मिली जो नकारात्मक सोच या पैटर्न्स हैं,
बिल्कुल,
उन्हें सचेत रूप से अगली पीढ़ी तक ना पहुंचने दें, उस चक्र को तोड़ना।
एकदम सही। और ये सब सिर्फ पर्सनल लाइफ में नहीं, कामकाज की जगह पर भी लागू होता है।
अच्छा, वहाँ कैसे?
वो जो अंदर का आलोचक है, उसे पहचानकर इम्पोस्टर सिंड्रोम से निपटना आसान हो सकता है।
वो जो फीलिंग आती है ना कि मैं काबिल नहीं हूँ, बस सबको बेवकूफ बना रहा हूँ।
हाँ हाँ, वो बहुत कॉमन है।
उसे चुनौती देना, अपनी बात ज्यादा आत्मविश्वास से रखना, वर्कप्लेस की डायनामिक्स को बेहतर समझना। हाँ, कैसे वो उदाहरण आपने दिया था कि अगर कोई मीटिंग में बोलने से डरता है क्योंकि बचपन में उसे सिखाया गया था कि बड़ों के बीच मत बोलो।
हाँ,
तो इस कनेक्शन को समझना ही पहला कदम है, ये जानने का कि ये डर आज का नहीं, अतीत का है, और फिर शायद वो धीरे धीरे बोलने की हिम्मत जुटा पाए।
बिल्कुल,
जागरूकता ही बदलाव का पहला कदम है।
मेरे लिए तो इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ी राहत की बात निकली है, वो ये जानना है कि हमारा दिमाग और हमारी कहानी दोनों कितने लचीले हैं, कितने प्लास्टिक हैं। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी और नैरेटिव साइकोलॉजी वाली बात,
ये एहसास कि हम सच में बदल सकते हैं, अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं, अपनी जिंदगी की दिशा मोड़ सकते हैं, ये बहुत सशक्त महसूस कराता है। ऐसा लगता है कि हम अपने अतीत के कैदी नहीं हैं।
हाँ, ये बहुत उम्मीद जगाने वाली बात है। और मेरे लिए जो सबसे गहरा सबक है, वो ये है कि खुद को समझना हमें खुद की आलोचना करने से हटाकर खुद पर दया करने की ओर ले जाता है, जिसे सेल्फ कंपैशन कहते हैं।
सेल्फ कंपैशन, हाँ।
हम मुझ में क्या गड़बड़ है ये पूछने की जगह ये पूछना सीखते हैं, मेरे साथ ऐसा क्या हुआ जिसने मुझे ऐसा बनाया और मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। ये समझना कि हम खराब या टूटे हुए नहीं हैं,
हाँ,
बल्कि हम मजबूत ताकतों का नतीजा हैं, और हम में उन ताकतों को समझने और अपनी कहानी को बदलने की क्षमता है। ये एक ज्यादा नरम, ज्यादा मानवीय नजरिया है खुद को देखने का।
बिल्कुल, खुद के प्रति थोड़ी नरमी बरतना।
हाँ, तो आज की इस बातचीत को खत्म करने से पहले क्यों ना श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाएं सोचने के लिए।
हाँ, जरूर।
अगर हमारी पहचान लगातार बदल रही है, विकसित हो रही है, तो ये हमारे लंबे समय के लक्ष्यों या हमारी कमिटमेंट्स जैसे शादी या करियर, इनके बारे में हमारी सोच को कैसे बदल सकता है? क्या इसका मतलब है कि हमें ज्यादा लचीला होना चाहिए?
ये सोचने वाली बात है। और एक और सवाल मेरी तरफ से, अपनी जो विरासत में मिली सांस्कृतिक या पारिवारिक स्क्रिप्ट्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आज आप अपनी कहानी में कौन सा एक छोटा सा बदलाव या एडिट करने की शुरुआत कर सकते हैं जो आपको थोड़ा ज्यादा असली, थोड़ा ज्यादा खुद जैसा महसूस कराए।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।